इससे आगे आप कुछ उनकी अमली मिसालें दिखेंगी कि अल्लाह के नबी के दौर में क्या शोशे थे, क्या प्रोपेगंडे थे जिनके ज़रिए से कुरान से लोगों को दूर कर दिया जाता था। हमें इस मामले में अपने आप को देखना है कि कहीं हम आज के दौर के प्रोपेगंडों का शिकार होकर मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी का तसव्वुर तो नहीं रखते और हम अल्लाह की खूबसूरत दीन को पीछे तो नहीं डालते। अब इनकी बातों को हम पढ़ेंगे एक साथ और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। फरमाए फकुलु मिम्मा ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया इसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया। इसकी तफसील तो वो तुम्हें बता चुका है, कहाँ? सूरत मायदा में। लेकिन वाइन्ना कसीरन, लेकिन लोगों की अक्सरियत का हाल यह है कि इल्म के बग़ैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर, इसको हाईलाइट कर ले, बग़ैर इल्म के महज ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। करो क्या, तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी, और जो लोग गुनाह कमाते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो इसका गोश्त न खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक और एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने इनकी इताअत कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। यहाँ मुशरिकीन मक्का का एक शोशा है, जो अगली एक आयत में अल्लाह ताला ने उनका जुमला भी नोट किया है, अपने लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि इस्लामी ज़बीहा की शरायत क्या है। पीछे पढ़ चुके सूरत मायदा में कि काटते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए ताकि अल्लाह से इजाज़त ले ली जाए कि मैं इस जानवर को ज़िबा कर लूँ और जिस्म से फालतू खून निकाल दिया जाए। इसको कहते हैं इस्लामी ज़बीहा, मुसलमान इसको खाते हैं। इसके बरक्स मुर्दार मैता, जिसको मायदा में पढ़ चुके अलमतरदी अलमनहनिका और मौकूज़ा और नतीहा की सूरत में, कि जो जानवर खुद मर जाए उसको ना खाओ। मक्का वालों ने एक शोशा छोड़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को करने के लिए, इस्लाम से रोकने के लिए। कहने लगे देखो ये मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं, जिस जानवर को अल्लाह मार दे, यानी बुलंदी से गिरा जानवर मर गया, लाठी लगी जानवर मर गया, कहते थे जिस जानवर को अल्लाह मारता है उसको तो नहीं खाते, और जिसको खुद मारते हैं यानी स्लॉटर करते हैं उसको खाते हैं, कितने बेवकूफ़ हैं। अब आप देखिए ज़ाहरी नज़र से बंदा एकदम घूम जाता और ज़रा सा अपने दीन के बारे में शक हो तो कहेंगे बाकी बात तो सच है। अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि इनकी इन घूंडी बातों में आकर तुम अपने दीन को ना छोड़ो, हलाल खाओ तैयब खाओ, जितना ज़्यादा अच्छा खाओगे उतना तुम्हारे काम भी अच्छे होंगे। फिर अब देखिए अब खाने की बातें बहुत चलती जाएंगी आगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जहाँ हलाल और हराम खाने की बात होगी वहाँ ख़ाशे नफ्स की पैरवी की बात होगी और वहाँ फुहश की बात होगी। इसी बारे में इंशाल्लाह अगली सूरत में हम पढ़ेंगे कि शैतान का पहला हमला इंसान पर हराम लुकमा उसके पेट में डालना था, और उसका पहला असर इंसान पर क्या उतरा कि उसका लिबास उतर गया। आज दुनिया में जो बेहयाई फैली हुई है, फहाशी फैली हुई है, घर के अंदर के छुपा के पहनने वाले कपड़े लोग सरे आम पहनते दिखते हैं, तो ये असल में हराम का नतीजा है। इवन नॉन मुस्लिम भी जब ये गंदी चीज़ें नहीं खाते पीते तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होते हैं। सारे नॉन मुस्लिम भी ऐसे नहीं है कि बाहर आने से पहले कपड़े भूल जाएं, उनको पता ही ना चले कि लग क्या रहा हूँ, गोश्त का पहाड़ लग रही हूँ क्या, लग रही हूँ कि मैं खूबसूरत लगती तो चलो कोई मानता भी, मैं हूँ क्या और मैं बन के क्या निकली हूँ। वो सिर्फ वही चंद लोग हैं जो हर माशरे में होते हैं जिनके अंदर हराम के लुक में जाते हैं। तो यही बात करके बता दिया कि तुम लोगों की बातों से अपने दीन के ऊपर इतराज़ात ना करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बदल जाओगे। अब अल्लाह सुना रहे हैं कि कैसे अपने आप को बदलो। अब अमन का न मई तनफा यही ना हो वजाल ना लो नूर यमशी बिही फिन्नास। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसे ज़िंदगी बख्शी, सोचिए इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान ज़िंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह इससे निकलता ही ना हो। जवाब दें, हो सकता है आप घर में अंधेरे कमरे में बैठे हो, कुछ नहीं दिख रहा और घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लाइट नहीं मिल रही, बल्ब नहीं मिल रहा, मोमबत्ती नहीं मिल रही, माचिस नहीं मिल रही, और एक दूसरा वक्त है जब आपके घर में माशाल्लाह एक से क्या 20 लाइटें लगी हुई हैं, एक बल्ब के साथ 4 बल्ब जला लेते हैं, क्या ये दोनों कैफियत फ़र्क होती हैं कि सेम? देखिए जहाँ अंधेरा आएगा ना वहाँ डिप्रेशन आएगा, नॉर्वे में रातें काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं सर्दियों में, सॉरी रातें बहुत लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो 50% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आम मर्ज़ है, औरत प्रेग्नेंट होती है तो लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, बच्चा डिलीवर होता है, अपने मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, गैरों को तो छोड़ ही दें। बहुत ज़्यादा केसेस हम सुनते थे कि बच्चा पैदा हुआ पर लड़की खैर से रहे, वो कहते हैं वो इतनी ज़्यादा चेंजेस में से बच्ची गुजरती है कि फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। 6-6 महीने तक बच्चियाँ अपने बच्चे को नहीं देखती और पकड़ती हैं और माँ ही आके संभालती हैं, क्योंकि मुर्दगी है, जिस्मानी मुर्दगी हमारे बस में नहीं। यदि मैं अपनी मर्जी से ज़िंदा और मुर्दा नहीं हो सकते, लेकिन दिल की मुर्दगी और उसकी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। ये किताब लोगों को ज़िंदा करती है, इस किताब को आप ज़िंदगी कह सकते हैं, क्योंकि अल हय और अल क़य्यूम से ये जुड़ जाती है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पैगाम दिया कि तुम इस किताब के नूर को लेकर घरों में ना बैठ जाओ, यमशी बिही फिन्नास, निकलो लोगों में, चलो फिरो। यहाँ से पता चलता है कि दीन सिर्फ मस्जिद में बैठना नहीं सिखाता। तस्बीह पकड़ लो, फिर मसल्ला पकड़ लो, फिर उसके बाद कुरान पकड़ लो, फिर उठ जाओ, फिर बैठ जाओ बस मस्जिद में, नहीं, ये चंद दिन का इतकाफ हो सकता है। मोमिन को इस किताब की रोशनी में जीना है और इस रोशनी में दुनिया में पूरे यकीन और फख्र के साथ चलना है कि आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। यमशी बिही फिन्नास, जब तक नहीं होगा दुनिया में लोगों को किताब पढ़नी नहीं आएगी। कितने लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं जो कुरान पढ़ते हैं आज के दौर में, आटे में नमक के बराबर। और कितने नॉन मुस्लिम हैं जो चलते फिरते सड़कों पे और रोड्स पे और बाजारों में और मॉल्स में और प्लेटफॉर्म्स पे चलते फिरते मुसलमानों को देखते हैं, कोई हिसाब है? नज़र तो सबकी खुली हुई है ना। अब आप सोचिए, इस बंद रूम क्लासरूम में आप कितने को लोग हैं इस शहर के मुकाबले में, चुटकी भर नमक काटे में कितने लोगों को पता है कि आज के इस बारे में क्या नूर फैल रहा है? नहीं पता ना। लेकिन आप ये जितने भी इधर हैं माशाल्लाह, जब निकल के इन गलियों से गुजरेंगे, जब आप हीलिंग रोड पे जाएंगे, जब आप हाई रोड पे जाएंगे, आप इधर से उधर फिरेंगे, आप चलते फिरते कुरान के ट्रेलर नहीं बन सकते, आप बुकलेट्स नहीं बन सकते, आप ब्रोशर्स नहीं बन सकते। आप किसी को ब्रोशर भी देते हैं ना, वो एकदम पकड़ेगा, कट जाएगा। लेकिन आप सर से पांव तक अपने चेहरे मोहरे, अपने हाल हुलिए और अपने चेहरे की इत्मीनान और स्माइल और लोगों की मदद करने के साथ यमशी बिही फिन्नास बन के देखिए इस दुनिया के अंधेरे कैसे दूर होते हैं। और याद रखिए, इस कुरान के नूर को आम करना भी हमारा काम है। किस तरह लोग इस किताब की रोशनियों को फैलाते हैं, आजकल मुख्तलिफ तरफ से माशाल्लाह तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर लोग इस कुरान के नूर को फैला रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे छोटे छोटे रोशनी के टमटमाते हुए बल्ब है, कितना खूबसूरत वो सेटअप करते हैं। अगर हम इन नेमतों को लेकर चल पड़े, आप देखिए हर घर में कुरान का नूर फैलेगा। इतनी मेहनत की है साथियों ने, यकीन करें, जो हमारे ऑनलाइन और ऑन साइट इन एडमिन्स थे दौरे कुरान के लोगों को ऑडियोज़ देना, लेना, ट्रेनिंग, कोई छोटी बात है, एक एक फोल्डर बना के देते हैं। कुछ लोग तो मेरा अलग खोलते ही नहीं सारा महीना, और एक एक दिन का हिसाब लिख रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपने अपने फील्ड में आयतों का नूर फैलाएं। इधर बैठते हैं ना, आपको रोशनी मिल रही है ना, इसको साथ लेके जाएं, चलते फिरते हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस पारे के साथ तो मुझे अल्लामा इकबाल की यही पोइम याद आती है कि अल्लाह मुझे छोटा सा नूर बना। आप देखिए कि एक इमेजिनेशन में लाइए, रात है, अंधेरा है बिल्कुल, एक बड़ी सी फ्लैश लाइट चल जाती है और स्टेडियम में, स्टेडियम्स में कभी रात को मैच हो रहा हो तो क्या होता है, बिग बिग बल्ब, फ्लैश लाइट, अच्छा लगता है, आंखें जुदे आ जाती हैं। एक सूरत ये कि दुनिया में अंधेरा है, एक बड़ा सा बल्ब जला दें आप, और ज़्यादा लोगों को अंधेरे लगे और आंखें बंद होती हैं कि इस लाइट को कम करो, नज़र ही नहीं आता। अब इसके बरक्स आप सोचिए, एक जंगल है अंधेरा सा, उसमें छोटा सा एक जुगनू है, और अगर आपने अल्लामा इकबाल की वो जुगनू वाली पोइम पढ़ी है ना, तो आप उसको जहन में ले आइए। जुगनू पास के पास छोटी सी लाइट होती है, फिर दूसरे के पास छोटी सी, फिर तीसरे, जब वो जुगनू बाहर निकलते हैं अंधेरे में, तो ना सिर्फ ये कि वहाँ रोशनी होती है बल्कि खूबसूरती है। आप सब वो जुगनू बन सकते हैं अपने माशरे का कि जो अपने हिस्से का काम करेगा। हमें अल्लाह नहीं कहता बड़े बड़े फ्लैश लाइट चलाओ, हम में से किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं कि हम पूरी दुनिया में जाके एकदम बहुत ज़्यादा कई हज़ार वाट का बल्ब जला दें। अपने इर्द गिर्द तो छोटी छोटी रोशनियाँ चलाएँ, आप देखेंगे कि अपने आप को आप इस किताब की खिदमत वाला बना लें, जिधर से गुजरते जाएंगे रास्ते बनते जाएंगे। रेड कारपेट ट्रीटमेंट आपको दुनिया वालों से ना भी मिले, वल्लाही आपको इस तरह से महसूस होगा कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। शर्त यह कि यमशी बिही फिन्नास। आजकल अगर आप सब साथी जो यहाँ आ रहे हैं और आपके पर्सिस में दावा सीडीज और इस दौरे कुरान के बुकलेट्स नहीं हैं, तो आपके दिल में बिल्कुल हिदायत की कोई तलब नहीं है कि दूसरों को मिले। ये एक क्राइटेरियन है आपका मेरा। मस्जिदों में आप देखिए, जितना आज के दौर में सीडीज़ बढ़ सकती हैं, मैं कहती हूँ कभी नहीं बढ़ सकती। लोग लेने के भी मूड में होते हैं। आजकल तो मूड ही ये बना हुआ है कि हमें दीन चाहिए। सबको पता है किधर से बनती हैं, किधर से मिलती हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आजकल आप अपने बच्चों को लगा के साथ इस नूर को नहीं फैला पा रहे ना, तो याद रखिए कि अभी वो तलब कोई नहीं आई, लिए दिए। कोई पूछ लेता है तो परस फफोलने पड़ते हैं कि कहीं बची खुची कोई चीज़ पड़ी है तो उसको दे दें। जो इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों में हम जाते हैं, कोई ना आए, किसी दिन वो देखिएगा कि वो कोई सुनेगा ना किसी गम के मौके पे, तो आज नहीं साल बाद दो साल बाद उसकी ज़िंदगी में कुरान का ये नूर आ जाएगा। लेकिन हम थोड़े से ठंडे हो गए। जो नेमत पास होती है उसकी तो कदर ही नहीं होती। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल्काफ़िरीना मा कानू यअमलून। काफिरों के लिए तो इसी तरह इनके अमाल खूबसूरत बना दिए गए। किस तरह वो फैलाते हैं अपने नूर को, ज़रा आप उनका भी नूर देखें जाके हैरान हो जाएंगे। बाकी तो सिर्फ उनसे काम करने का तरीका सीखने के लिए आप जाके उनके वो दावा सेशंस अटेंड करके देखें, जो क्रिश्चियनिटी को आम करने और जीसस के मैसेज को आम करने के लिए। वो अपने लोगों को कहते हैं, तुमने बेनियाज हो जाना है लोगों की बातों से, माइंड नहीं करना, स्माइल 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 और लोगों की खिदमत करो, क्योंकि उनको पता है कि हमने ये पैगाम कैसे देना है। और इसी तरह हमने हर बस्ती में इसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वहाँ अपने मकरो फरेब का जाल फैलाएं। फैला हुआ आज किसी मुजरिम के लिए जाल, हैंड ट्रैप करने वाले लोग आज हैं हमारी नस्लें किसी के शिकार में। कोई बनाना चाहता है? हर बस्ती में, हर इलाके में याद रखिए, लोग बड़े बड़े प्लान बनाए बैठे हैं आपकी नस्लों को लेने के लिए। 5-5 साल, 20-20, 25-25 साल आगे के प्लान बने हुए हैं कि मुस्लिम जनरेशन को हमने कैसे ट्रैप करना है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने खुद बुक पढ़ी है। एक लीक हो गया था प्लान कि जिसमें उन्होंने अगले 25-30-100 साल की प्लानिंग की हुई है, जिनको प्लानिंग करने का वाकई बहुत शौक है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने कैसे मुस्लिम्स को अपने दीन में लाना है और इनकी नस्लों को हमने बदलना है। प्लान वो तो बुक बैन है, कहीं से छपी और वो थोड़ी बहुत आम हुई, अब जहाँ कहीं वो मिलती है उसको पकड़ लेते हैं। पूरे ये जो अब दुनिया में हो रहा है और ये बुक छपे हुए ऐसे कई साल हो गए हैं, वही सब आज वो कर रहे हैं प्लानिंग के साथ, जो आज से 50-60 साल पहले उन्होंने प्लानिंग करके रख लिया था कि क्या चीज़ इनके दिमागों में डालना है, इनकी औरतों को शर्मसार करना है अपने औरत होने पे, और 4 शादियों का मसला हवा बना के इनके नबी को बनाना है। ये उनकी प्लानिंग के हिस्से हैं जो आज वक्त के साथ साथ वो एक्सपोज कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं वो तो मकरो फरेब के जाल फंसाएँ फैलाएँ, दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं, मगर इनके इन्हें इसका शऊर नहीं है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जब इनके सामने कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे जब तक कि वो चीज़ खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई। छोटा मुँह बड़ी बात। कहते थे हमारे पास भी फरिश्ता आए, वही उतरे, हम खुद किताब उतरती दे के फिर मानेंगे। तो क्या कॉलेज में दाखिल होने वाला हर तालिबे इल्म ये ख्वाहिश कर सकता है कि प्रिंसिपल खुद आके मुझे बताए कि स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के फिर मानूंगा? मैंने और आपने कभी कहा कि मलका खुद आके हमें बताए कि यूके के रूल्स के फिर हम इधर रूल्स मानेंगे? मानते हैं ना लोगों के, तो अल्लाह के नबियों के मामले में क्यों बात नहीं मानते? अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे करे, कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। इस पे तड़प के दुआ मांगिए कि अल्लाह तुझे पता है ना कि तू किससे अपने दीन का काम ले सकता है, अल्लाह मुझसे भी ले ले। मक्का लोगों को इतना रोना आता था कि ये क्या यतीम बच्चा नबी बन गया, ये क्या गरीब अब्दुल मुतलिब जिनके घर में कपड़े पैसा खाना भी नहीं था कि अपने बच्चे रिश्तेदारों में बांट दिए ताकि वो उनकी तरबियत करें, इसका जो पोता है ये दीन पे आ गया। अल्लाह कहता है मुझे पता कि इसमें क्या गट्स हैं, याद रखिए मेरे सारे गट्स मेरे हाथ में रह जाएंगे, मुझसे दीन का काम तभी होगा जब मेरा रब चाहेगा। तो ये दुआ मांगने ली दुआ तड़पिए रोइए कि अल्लाह मुझसे अपने दीन का काम ले। करीब है कि वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मक्कारियों की पदाश में अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत और सख्त अज़ाब से दो चार होंगे। बस हकीकत है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है, आगे ना हिदायत देख रहे पूरा पारा इसी थीम पे अल्लाह पेश करता है। अब आपकी मर्जी है दिल खोले ना खोले, लेकिन जब अल्लाह किसी के लिए खोलता दे करता है बख्शिश का इरादा तो क्या करता है, बहुत प्यारी आयत है, फ़मन युरिदिल्लाहु यहदीहु यशरह सदरहु लिल्इस्लाम। बस हकीकत यह कि जिसे अल्लाह हिदायत देने हिदायत बख्शने का इरादा करता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है इसके सीने को तंग कर देता है, और ऐसा भेजता है कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही इसे यूँ मालूम होने लगता है गोया कि इसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर गई। है ना ये सच, जिसका सीना खुलता है ना उसको तो दीन का कोई हुक्म मुश्किल नहीं लगता, कोई मुतालबा मुश्किल नहीं होता है। श्योर श्योर ज़रूर, आई एम अवेलेबल, आई विल डू दिस, जी अल्लाह मैं तैयार हूँ, अल्लाह मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, इट्स नॉट बिग डील, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिसको मुश्किल लगे वो कहेगा इतना मुश्किल, हाय नहीं नहीं बहुत काम है, कोई तो 5 मिनट नहीं लगा सकता, कोई 5 घंटे लगा लेगा। वजह क्या है कि सीना खुलता है। आप देखिए कि इसको सुनते हुए पहाड़ पे चढ़ने लगा तसव्वुर लाइए, जब इंसान पहाड़ी की तरफ चढ़ता है तो क्या होता है, सेहतमंद जो बंदा होता है ना उसके लंग्स खुलते हैं, ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है, ऊपर से वो और फ्रेश अप होके आम दिनों में कम चलेगा लेकिन पहाड़ पे चलते हुए और ज़्यादा तेज़ चलेगा। लेकिन दिल के मरीज़ का क्या हाल है, चलिए शुगर पेशेंट कोई भी तकलीफ़ हो वो पहाड़ी इलाकों में नहीं चढ़ सकते, हिली इलाकों में उनके लिए चलना मुश्किल है क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम होती हुई महसूस होती है। अल्लाह बंदे का स्टेमिना देखता है, कितने नए काम और ये अपने ऊपर ला सकता है। देखिए रमज़ान जो है ना ये नए कामों को शुरू करने का मौसम है, जैसे बीज डालने का एक मौसम होता है उसके बाद फसलें खुद ही लग जाती हैं, वो मौसम गिर जाए ना गुजर जाए तो बीज नहीं डलते। कोई प्लानिंग की हुई है, कोई इरादा, कोई ख्वाहिश है ना, कोई क्लास शुरू करनी है, कोई कोर्स करना है, कोई बच्चों की क्लास, बिस्मिल्लाह करके रमज़ान में नियतें कर लें, इरादे की सीढ़ी पे चढ़ते जाएं, अल्लाह आपके लिए आसानियां करता जाएगा। और जितना आपका सीना खुला हुआ है उतना आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, इट्स ईजी, ये हो जाएगा। और दूसरी तरफ नो, रोज़ा रख के मैं नहीं आ सकती प्लीज़ क्योंकि मुझे माइग्रेन होता है, ज़्यादा खाना खा के मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे सुस्ती होती है, नींद आती है, तो कब आएंगे आप, खा के आप नहीं आ सकते पेट में दर्द होता है, भूखे आप नहीं आ सकते आपको नींद आती है, कब नींद का काम करेंगे, यही प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। घर में कोई नहीं इसलिए नहीं आ सकती, घर में बहुत है इसलिए नहीं आ सकती, तो अल्लाह कहता है कब आओगे, कब आओगे, जब तुम्हारा सीना खुलेगा। हम सब दुआ करें रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।